ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और एनसीआरटीसी ने आरआरटीएस के गाजियाबाद स्टेशन पर 3 दिवसीय नमो भारत पुस्तक मेला आयोजित किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रबी मौसम के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई है।
रबी मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी अप्रूव हुआ है। जो 6 रबी क्रॉप्स है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है, बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है, ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है, मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है और सैफ्लावर यानी कुसुम उसके लिए 140 रुपीज बढ़ोतरी की गई है।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इसका लाभ 49 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा।
कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में एड होगा। बहुत बधाई सबको।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर रेल और सड़क पुल सहित वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
एक नया ब्रिज बनाए जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। गंगा जी पर यह ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2,642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा। करीब 4 साल का टाइम लगेगा।
दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेसवार्ता में इस निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसके कारण उन्हें लंबी कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियां झेलनी पड़ रही थीं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब इन कॉलोनियों में बिना एनओसी के 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राजधानी के 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को लाभ मिलेगा। वहीं दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी की शर्त कभी डीडीए या दिल्ली नगर निगम में नहीं लगाई, बल्कि ये पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के पावर डिस्कॉम ने लगाई थी। उन्होंने बताया कि भाजपा के सांसदों ने दिल्ली वालों की बिजली एनओसी और संपत्ति म्यूटेशन आदि की समस्याओं पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के माध्यम से हस्तक्षेप कर फैसला कराया है। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि जब एनओसी का ये प्रावधान लाया गया था तब सरकार ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब चुनाव नजदीक है तो सरकार ने भ्रष्टाचार और प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर दूसरों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित किया गया है। इस आयोजन में 400 से अधिक प्रदर्शक, लगभग 900 स्टार्टअप और 120 देशों की भागीदारी हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अग्रणी दूरसंचार कंपनियां और नवाचार करने वाले लोग इस कार्यक्रम में क्वांटम प्रौद्योगिकी तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था में प्रगति को उजागर कर रहे हैं।
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, जहां विश्व भर से आई कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने अत्याधुनिक उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें भाग लेने के लिए आए हुए विश्व भर के तकनीकी विशेषज्ञ भविष्य की तकनीकों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि ऐसे उत्पाद और सेवाएं विकसित की जा सके जो आने वाले समय में लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सके। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान 6G, 5G, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक, सेटकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक ने बताया कि उन्हें एक ही छत के नीचे विश्व भर के संभावित खरीदारों को अपने उत्पाद और सेवाएं दिखाने का अवसर मिल रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम इस महीने की 18 तारीख को समाप्त होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए सकलेन अख्तर।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजधानी दिल्ली में आज पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस 6 दिवसीय महोत्सव में अमेरिका, इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, सिंगापुर और श्रीलंका सहित कई अन्य देशों से नृत्य कलाकार, विद्वान तथा प्रशंसक शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि भारत विविध और अनोखी कलाओं से समृद्ध देश है, जो अपनी नृत्य कला के माध्यम से विश्व को संस्कृतियों के मेल तथा साझी प्रगति का संदेश देता रहा है।
भारतीय नृत्य परंपरा के इस वैश्विक महोत्सव में आना निश्चित रूप से मेरे लिए प्रसन्नता का विषय भी है, मेरे मन में आह्लाद का विषय भी है और साथ साथ में मेरे लिए एक गरिमा और गौरव का पल भी है।
कमानी ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक इस महोत्सव का निःशुल्क आनंद ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 21 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संगीत तथा नृत्य ऐसी विधाएं हैं जो सीमाओं से परे हैं और सार्वभौमिक रूप से समझी जाती हैं। नई दिल्ली में भारतीय नृत्य महोत्सव पर पहले अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए एक विशेष संदेश में श्री मोदी ने युवा पीढ़ी के लिए नृत्य के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भारत की ये सांस्कृतिक पहचान है और उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को ऐसे उत्सव में शामिल होने से उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद मिलती है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका सशक्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के एक समारोह में शामिल होंगे। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के महत्व, पाली भाषा की महत्ता और बुद्ध धम्म की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के प्रयासों पर अपने विचार साझा करेंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समारोह को विशेष रूप से संबोधित करेंगे। वहीं संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली नगर निगम एमसीडी के 600 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों की नौकरी पक्की कर दी। सिविक सेंटर में आयोजित सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण कार्यक्रम में महापौर शैली ओब्राय और मुख्यमंत्री आतिशी ने कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ये कर्मचारी दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी आज से आरआरटीएस के गाजियाबाद स्टेशन पर नमो भारत पुस्तक मेला आयोजित कर रहा है। 3 दिवसीय इस मेले का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। एनसीआरटीसी के अनुसार इस पुस्तक मेले में यात्रियों और स्थानीय निवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं। इस मेले का आनंद सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लिया जा सकता है। पुस्तक प्रेमी इस मेले में निःशुल्क जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आज पार्टी मुख्यालय से एक जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 29 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर अरविंद केजरीवाल के लिखे गए पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्रियों सहित पार्टी के कई नेता तथा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। श्री केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा के सत्ता में आने पर दिल्ली में पानी, बिजली और इलाज जैसी निशुल्क मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं बंद कर ली जाएंगी। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार की आशंका है, जिसके कारण वो बेबुनियाद बयानबाजी करके लोगों को डरा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण से संबंधित एक आदेश का अनुपालन न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकारों की आलोचना की है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल हरियाणा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है। मामले को लेकर शीर्ष अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव को एक समन भेजा है, जिसमें उन्हें 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। पंजाब के मुख्य सचिव को भी इस दिन अदालत में उपस्थित रहने और आदेश का पालन न करने के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। यह बताने को भी कहा गया है कि अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। नीलम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जा रही है। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक आयोजन है जो दूरसंचार, डिजिटल प्रौद्योगिकी और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3000 से ज्यादा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ ला रहा है।
यह अंतर्राष्ट्रीय आयोजन भारत को वैश्विक दूरसंचार एजेंडे और भविष्य की तकनीक को दिशा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर रहा है। साथ ही भारतीय स्टार्टअप को बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद पहुंचाएगा। इस 10 दिवसीय वैश्विक कार्यक्रम के दौरान दूरसंचार उद्योग की आवश्यकताओं और भविष्य पर आधारित विषयों पर कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें नवाचार को लेकर भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, ऑडियो विजुअल मीडिया से जुड़े विषय, डेटा सुरक्षा और डिजिटल विभाजन के चुनौतियों से जुड़े विषय शामिल हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गुरुग्राम में चल रहे सरस आजीविका मेले के चौथे दिन आज बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।
दो सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपने अपने राज्यों के उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की टसर, कथा और चंदेरी साड़ी शामिल हैं। इसके अलावा राज्यों के विशेष मसाले और व्यंजन भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र हैं। इस महीने की 29 तारीख तक चलने वाले इस मेले में आगंतुक सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रिया मंडल के साथ अक्षित वैद्यान।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आज नोएडा सेक्टर 62 में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बीसिल का दौरा कर कार्य समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संस्थान के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री मुरुगन ने फिल्म सिटी के मारवा स्टूडियोज का भी दौरा किया और मारवा स्टूडियोज तथा एशियन अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में निरंतर होने वाली गतिविधियों का जायजा लिया। नीति आयोग कल से नई दिल्ली में दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम दुनिया में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीकी विकास से जुड़ी परियोजनाओं, उत्पादों तथा अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में जानकारी देगा। नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके सारस्वत ने कहा कि मेथनॉल एक बहुआयामी ईंधन है। इसे बायोमास, कोयला और नवीकरणीय स्रोतों सहित घरेलू फीड स्टॉक की विस्तृत श्रृंखला से उत्पादित किया जा सकता है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि दुनियाभर के कुल डिजिटल लेनदेन का 46% हिस्सा भारत में होता है। वे आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंधिया ने बताया कि इस वर्ष अगस्त में 2.75 अरब डॉलर के लेनदेन में से करीब 1.5 अरब यूपीआई के माध्यम से हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक नागरिक के लिए साइबर सुरक्षा करना सुनिश्चित बहुत जरूरी है। राजधानी दिल्ली में आज कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 19 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में एक मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार जीरो इफेक्ट के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने आज नई दिल्ली में पहले भारतीय फाउंडेशन गुणवत्ता प्रबंधन सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है और एनसीआरटीसी द्वारा आरआरटीएस के गाजियाबाद स्टेशन पर 3 दिवसीय नमो भारत पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।